ओके ठीक है, शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة مائدہ کی تیسری آیت ہی ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر. کافی عرصے سے یہی چل رہی ہے، معارف و مسائل ہم اس کے پڑھ رہے تھے. اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر مردار جانور کو حرام کیا، اور بہتے ہوئے خون کو حرام کیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے پکارا جائے تو اس کو حرام کیا، اور منخنقہ تو جو مرا ہوا مر گیا گلا گھونٹنے سے یا چوٹ لگنے سے یا اونچے سے گر کر کے اونچائی سے گر کر کے مر گیا ہو، یا سینگ مارنے یعنی چوٹ لگنے سے جو مر گیا ہو، یا جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، سوائے اس کے جس کو کہ تم نے اس کے مرنے سے پہلے حلال کر دیا ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم نے کافی تفصیل سے بات کری تھی کہ صرف آخری کے چار مراد ہیں اور باقی اس میں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہتے ہوئے خون کے اوپر اللہ کا نام لے لینے سے یا بہتے ہوئے خون کو کسی طریقے سے پاک نہیں کیا جا سکتا، اور خنزیر کو کسی بھی طریقے سے پاک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس میں خالی آخری کے چار مراد ہیں، شروع کے مراد نہیں ہیں. اور باقی ترجمہ جو ہے وہ اچھا. وما ذبح علی النصب، اور کسی آستانے یا تھان وغیرہ کے اوپر کسی کو ذبح کیا گیا ہو وہ بھی تمہارے اوپر ہم نے حرام کیا ہے، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی ڈرائنگ لاٹس اس طریقے سے، جوئے کے طریقے پر ڈرائنگ لاٹس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو بھی حرام کیا ہے، اور یہ سب کا سب فسق ہے یعنی گناہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ حرام کی ہوئی اشیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ، یعنی فوراً بات فرمایا، حتیٰ کہ آیت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے، جنہوں نے تمہارا انکار کیا، نبی علیہ السلام کو رسول ماننے سے جنہوں نے انکار کیا، وہ کافر ہوتے ہیں نا، الذین کفروا. ٹھیک ہے، کہ وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے آج کے دن. فلا تخشون وخشونی، پس تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، ان سے ڈرنا ختم کرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہی کنٹینیویشن چل رہی ہے اسی ایک آیت کی، اسی ایک سینٹنس کی کنٹینیویشن جاری ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہو گیا کہ تمہارے لیے جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی دین ہے، کوئی اور دین تمہارے لیے میں نے پسند نہیں کیا، یا تم سے میں نے پسند نہیں کیا. تم کسی اور دین کے اوپر چلو گے، ٹھیک ہے، کسی اور وے آف لائف پہ چلو گے یا کسی اور وے آف تھنکنگ کے اوپر چلو گے، ٹھیک ہے، میں تم سے راضی نہیں ہوں گا، میں اس کے اوپر تم سے خوش نہیں ہوں گا. ठीक है, किस पर खुश होऊंगा? सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम पर खुश होऊंगा। तो मरद तो रफी मखमसतन, बस जो कोई लाचार हो जाए भूख में लेकिन गुनाह पर मायल ना हो, गैर मुतजानिफिन इस्मिन फइन अल्लाह गफूर रहीम। ठीक है, तो ये जो इस एक आयत का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, इसमें क्या चीज जो कि बिल्कुल इस आयत के शुरू में खाने पीने से मुताल्लिक बातें थी ना, कि इस किस्म के जानवर को तुम खा नहीं सकते हो, ये हराम है, खून को तुम नहीं खा सकते, ठीक है, खिंजीर को तुम नहीं खा सकते, तो खाने से मुताल्लिक चीजें थी। दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी एक खाना, हम देखते हैं ना कि भाई खाना तो ये तो एक बड़ी एक गोया कि गैर अहम सी चीज है, जीने के लिए नहीं खाना है बल्कि नहीं सॉरी खाने के लिए नहीं जीना है बल्कि जीने के लिए खाना है, ठीक है ना। खाना जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है बल्कि सिर्फ जिंदगी को जारी रखने के लिए खाना खाना है, ठीक है ना, खाने का यही मकसद है ना। वरना कुछ हमारे साथी या कुछ कुछ लोग माशाल्लाह खाने के लिए जीते हैं, तो वो तो गलत बात है। खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना है। तो खाना इज नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, राइट? फूड इज नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन आवर लाइव्स, राइट? इट्स नॉट सपोज टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन आवर लाइव्स, ठीक है। तो खाने के बारे में बात शुरू फरमाई और खाने के ऊपर बात खत्म फरमाई, लेकिन दरमियान में क्या बात करी है, राइट? समथिंग दैट गवर्न्स आवर एंटायर एग्जिस्टेंस, राइट? हमारी इस दुनिया की एग्जिस्टेंस और अगली दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए जो सबसे अहम चीज है, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, राइट? अल्लाह का दीन सबसे अहम चीज, तो वो बीच में सैंडविच कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। सैंडविच करना इसी को कहते हैं ना, कि इधर भी एक एक ब्रेड है, ब्रेड का पीस है, इधर भी एक ब्रेड का पीस है, और असल कबाब जो है वो बीच में है, सैंडविच का कबाब वो बीच में है, ठीक है। तो दीन जो है वो दरमियान में इसके रखा, अजीब, अल्लाह रब अल्लाह कि क्या हिकमत इसके अंदर है, अभी तो नहीं समझ में आ रही नहीं तो बस ये समझ में आया कि अजीब अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशन रखी है इस आयत के अंदर, ठीक है। तो आखिर में फिर फरमाते हैं वही खाने के बारे में, कि जिसने जो है ना वो शदीद भूख की वजह से अगर खा लिया हो कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर जाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है, लेकिन उसके दिल में गुनाह की रगबत ना हो, गुनाह की तरफ यानी अल्लाह की नाफरमानी का उसके दिल के अंदर शौक ना हो रहा हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाले, गफूर है, रहीम है, ठीक है। तो दिल के ऐसे जज्बे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि दिल में इसकी क्या चल रहा है, ठीक है। शदीद भूख की वजह से ये काम कर रहा है, या भूख के आगे बढ़ करके गुनाह की रगबत की वजह से वो चीजें खा रहा है कि जिनको मैंने खाने से मना किया है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की कैफियत की इतनी माइन्यूट डिटेल्स को भी जानते हैं और उसके मुताबिक फैसला करते हैं कि इसको माफ करना है कि इसको माफ नहीं करना है, ठीक है। तो फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में नहीं होगी ऐसी रगबत तो फिर अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है, ठीक है, यानी इग्नोर कर देंगे तुम्हारी इस वाली जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुमने खा भी लिया ना, क्योंकि तुम कोई कैलकुलेटर तो नहीं अपने मुंह में लगा के बैठे हुए हो, कोई तुम्हारी जो है वो प्रिसिशन किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है तुम्हारे मुंह में कि बस तुमने उतना ही खाना है जितनी कि तुम्हारे पेट के अंदर जरूरत थी, जितनी तुम्हारी बदन को जरूरत थी, इतना तो हमने तुम्हें कैलकुलेशन दी ही नहीं है। तो आगे पीछे तो तुमसे हो जाएगा, आगे पीछे तो तुमसे हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने तुम्हें कैलकुलेटर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो तुम्हें हम माफ कर देंगे क्योंकि हमने तुम्हें वो सलाहियत ही नहीं दी है, क्योंकि हमने तुम्हें सलाहियत दी ही नहीं है कैलकुलेशन करने की, तो उसके ऊपर हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन हमने तुम्हें किस चीज की सलाहियत दी है, ठीक है, अपने अपने फैसलों की हमने तुम्हें सलाहियत दी है, इख्तियार की हमने तुम्हें सलाहियत दी है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की फरमाबरदारी के दरमियान इख्तियार कर सकते हो, ये हमने तुम्हें सलाहियत दी है। इस सलाहियत को तुम अगर गलत इस्तेमाल करोगे यानी अल्लाह की नाफरमानी को इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, फिर तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा ये तो हो गया जरा सा तर्जुमा, दोबारा से एक दफा हमने पढ़ लिया। फिर इस सूरह मायदा की तीसरी आयत के जो मारूफ मसाइल हैं वो हमने पेज नंबर 37 तक पढ़ लिए थे ना, ठीक है, जिसमें के एक माली दीन का मतलब ये हमने पढ़ा था 36 के आखिर में, 36वें सफ़े के बिल्कुल नीचे, के खुलासा ये है कि एक माली दीन का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर के मुताबिक ये है कि दीन के तमाम अहकाम को मुकम्मल कर दिया गया, अब ना इसमें किसी ज्यादती की जरूरत बाकी है ना मनसूख होकर कमी का इहतमाल है। अब मनसूख नहीं हो सकता, अब कोई एब्रोगेशन नहीं हो सकती, अब कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है, अब मुकम्मल हो गया मामला, क्योंकि इसके बाद ही मुत्तसिल सिलसिला वही वफात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनक़ता होने वाला था, और बगैर वही इलाही के कुरान का कोई हुक्म मनसूख नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही के जरिए से अहकाम आ रहे थे, हत्ता के अहकाम की कैंसलेशन भी वही के जरिए से आ रही थी, लेकिन अब जो है वही का सिलसिला खत्म, अब जो है वो सब कुछ खत्म यानी मुकम्मल। खत्म का मतलब ये नहीं कि अब इवेपोरेट हो गया सब कुछ, बल्कि अब चेंजेस वगैरह का सिलसिला खत्म हो गया, और जो बज़ाहिर ज्यादती है अहकाम की उसूल इज्तिहाद के तहत फुकहा व मुज्तहिदीन की तरफ से हुई है वो दर हकीकत ज्यादती नहीं है, बल्कि अहकाम कुरानी की तौज़ीह व बयान है। जब कोई नई सिचुएशन पेश आती है, कोई नई चीज जो है वो सामने आती है, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है ये फिर मुज्तहिदीन इज्तिहाद के जरिए से फैसला करते हैं, लेकिन ये वही जो कंप्लीटेड उसूल हैं उन्हीं की एक्सप्लेनेशन होती है, कोई नया उसूल नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। जैसे वही भैंस वाली मिसाल है कि भैंस जो है वो अरब के अंदर नहीं होती थी, भैंसा भैंस तो वो अफ्रीका में होते थे या इंडिया में होते थे, तो जब वहां पहुंचे तो भैंसा नजर आया, तो अब भाई भैंसे जो है वो उसकी कुर्बानी जायज है कि नहीं, इस दफा जो है वो कुदरतन भैंसे की कुर्बानी के ऊपर बड़े मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं पहले तो कभी नहीं देखे हमने, लेकिन भैंसा के उसको अरबी क्या पंजाबी में शायद कट्टा कट्टा कहते हैं भैंसे को, ठीक है। अच्छा एक नजर होल्ड कीजिएगा। अच्छा तो इसके आगे हज़रत मुसा शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इसकी तफसील लिखते हैं कि इतमाम नियामत, ठीक है, इतमाम नियामत से मुराद मुसलमानों का गलबा और उरूज और उनके मुखालिफीन का मगलूब व मफतूह होना है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल कंट्रोल या पॉलिटिकल क्या कहते हैं इसको, हाँ गालिब हो जाना सही है, और सियासी तौर पर बाकायदा एक हुकूमती एतबार से गालिब हो जाना, ठीक है, तो इतमाम नेमत से ये मुराद है, और उनके मुखालफीन का मगलूब व मफतूह हो जाना जिसका जहूर मक्का मुकर्रमा की फतह और रसूम जाहिलियत के मिटाने से और इस साल हज में किसी मुशरिक के शरीक ना होने के जरिए से हुआ, यानी इतना जो है वो इन्फ्लुएंस इस्टैब्लिश हो गया मुसलमानों का कि ना सिर्फ ये कि मक्का मुकर्रमा जो है वो फतह हो गया, बल्कि जो इनों की रस्में थी ना, रसूम जो थी, रसूम क्या चीजें होती हैं कि जो कि आदत बन जाती है किसी कौम की, और उसको जो है ना वो बहुत अच्छा समझ करके करना शुरू कर देते हैं, इनको रसूमात कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारे दीन के अंदर जब दीन स्टैब्लिश हुआ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से टर्मिनोलॉजीज मिली, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इस्तिलाहात मिली दीन की, तो उनमें इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया नबी अलैहिस्सलाम ने, बिदा बिदात, ठीक है, जो दीन के अंदर नई चीजें शामिल कर ली जाती हैं जो कि असलन दीन के अंदर नहीं थी, तो उनको बिदात कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले इन चीजों को हर हर तरह की चीजों को रसूमात, ठीक है, रसूमात के लिए आमतौर पर उर्दू जुबान के अंदर जो लफ्ज होता है ना रसूमात का, वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो आपके कल्चर के अंदर यानी जिसका जो है ना वो खास दीन के साथ ताल्लुक ना भी हो, बस आपके एक रिवायात के साथ हो, आपके जो है वो माहौल मुआशरे के साथ हो, उसमें कोई ऐसी चीज जो है ना जो एस्टैब्लिश हो जाए जो कि पहले नहीं थी, ठीक है, तो उनके लिए फिर हम रसूमात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और बिदात का लफ्ज जो है वो खास दीन के अंदर इजाफा की जाने वाली चीजों के लिए बिदात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोनों ही गलत चीजें होती हैं, दोनों ही के नुकसान होते हैं, ठीक है, जैसे शादी ब्याह की रसूमात होती हैं और जो है वो यानी पैदाइश और मौत के वक्त की रसूमात बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, जो कि लोगों ने अपने तौर पे बना ली है, उसकी वजह से जो है वो मुश्किलात हो जाती हैं, लोगों का जो है वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जो गरीब होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, अमीर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से फजूल खर्ची होती है, ठीक है। शादी होना जो है वो बहुत बड़ी एक मुसीबत बन जाती है इन रसूमात की वजह से, और जब शादी होना जो है मुसीबत बन जाती है तो फिर गुनाह होना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है, शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इन रसूमात को मिटाना जो है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये किसी भी कौम के रग रग और रेशे रेशे के अंदर बस जाती है, ठीक है, और इसके लिए जो है वो लोग यानी मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान देने के लिए यानी लड़ाई झगड़ा के लिए, झगड़ा के करने के लिए तैयार हो जाते हैं इन रसूमात को बरकरार रखने के लिए। और कोई अगर इसके खिलाफ जाने की कोशिश करे तो फिर सारे उस मिल करके उसके मुखालिफ हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने अपने खानदान में कभी रसूमात के खिलाफ जाने की कोशिश करी हो तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल काम ये होता है, ठीक है। तो इस चीज को मिटाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, ठीक है, आम बात नहीं थी ये। तो मक्का मुकरमा फतह हो जाना हमारे लिए तो बस कामयाबी यही है ना कि जी शहर फतह हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, शहर फतह होना इतनी बड़ी कामयाबी नहीं होती जितनी बड़ी जो है वो रसूम जाहिलियत को मिटाना कामयाबी होती, ठीक है। और दूसरी चीज यही कि भाई किसी मुशरिक के हज में शरीक ना होना, ना होने देना, ठीक है। तो अब हज जो है ये एक ऐसा एक इवेंट होता था कि जिसके अंदर सारे अल्लाह के बंदे आकर के शामिल होते थे, चाहे वो रसूल को मानते हो चाहे रसूल को ना मानते हो, चाहे वो रसूमात करते हो चाहे वो रसूमात ना करते हो, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, सारे आकर के हज में शामिल होते थे ना, ठीक है ना। इट यूज टू बी एन लाइक जी ओलंपिक किस्म का कोई इवेंट होता था, ठीक है, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया से जो है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। अब उस मौके को खास उन लोगों के लिए कर देना जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानते हैं उनका आना बंद कर देना इस हज में, ये भी कोई मामूली बात नहीं थी, ये भी कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत मुश्किल काम होता है ये इस तरह का, ठीक है। चनो ने क्या लिखा, इन अनदर डिस्कशन यू हैड मेंशनड, यू हैड आल्सो मेंशन दैट कंप्लीशन ऑफ दीन वाज एस्टैब्लिश्ड was establishment of intellectual philosophical superiority of Islam over other religions। ये आ रहा है इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ के अंदर, इसके ऊपर भी बात करनी थी जब आपको मिला, ठीक तो ये जो है ना इत्माम नेमत से मुराद यहाँ पर ये है, ठीक है, कि मुसलमानों का गलबा फिजिकली तो खाली मक्का मुकरमा के ऊपर हुआ ना, और जो अरब था उसके एक छोटे हिस्से के ऊपर, ठीक है, मतलब ठीक है अगर आप कहें मेजोरिटी हिस्सा, लेकिन अगर आप मैप देखें उस जमाने में कितना मुसलमानों का गलबा हो चुका था, तो बहुत सारे इलाके थे इवन सरजमीन अरब के कि जिसके ऊपर मुसलमानों का पॉलिटिकल गलबा उस वक्त तक नहीं हुआ था, बाद में जाकर के मुकम्मल हुआ था, ठीक है। तो फिजिकल और पॉलिटिकल गलबा जो है ये भी, और रसूम जाहिलियत का यानी जो रग रग रेशे रेशे में मुआशरे के रच बस गई थी उन चीजों को खत्म कर देना, ठीक है, और ऐसी अथॉरिटी आ जाना कि जिसको कि आप मना कर दें तो वो वाकई मना हो जाए, अब किसी दूसरे के बस में नहीं कि वो आपको ओवरूल कर सके, ठीक है, कि नहीं भी मैं भी आऊंगा हज करने के लिए, मैं भी अल्लाह का मानता हूँ, मैं भी जो है वो काबतुल्ला को जो है वो अल्लाह का घर मानता हूँ, तो मैं भी आऊंगा, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, नहीं, आपके पास इतनी अथॉरिटी आ गई है कि आप जिसको रोकना चाहें आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हजरत ने यहाँ पे लिखी कि इत्माम नेमत से ये मुराद है, ठीक है। यहाँ अल्फाज कुरान में ये बात भी काबिल नजर है कि दीन के साथ लफ्ज इकमाल इस्तेमाल फरमाया गया और नेमत के साथ लफ्ज इत्माम इस्तेमाल किया गया, इकमाल और इत्माम ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, दीन के लिए इकमाल का लफ्ज और नेमत के लिए इत्माम का लफ्ज। हालांकि ये दोनों लफ्ज बजाहिर एक दूसरे के हम मानी और मुतरादिफ समझे जाते हैं, ठीक है ना, एक ही मफहूम समझा जाता है ना। उर्दू जुबान में तो वैसे भी एक ही मफहूम समझा जाता है, लेकिन इवन अरबी के अंदर भी हम मानी ही मुराद ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या हकीकत है, ये मुफ्ती साहब जो है वो आगे फरमाते हैं, हजरत शेख मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह आगे इसकी हकीकत बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो एक और बात, वो ये है कि जो मुसलमानों को या नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है, जो पॉलिटिकल गलबा अता हुआ था वो किन लोगों के ऊपर गलबा अता हुआ था, ठीक है, क्या इथियोपिया के ऊपर भी गलबा अता हो गया था, क्या रोमन एम्पायर के ऊपर भी गलबा अता हो गया था, क्या पर्शियन एम्पायर के ऊपर भी गलबा अता हो गया था, क्या चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर भी गलबा अता हो गया था, क्या हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन पर भी गलबा अता हो गया था? नहीं, ये बात हम सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को पॉलिटिकल गलबा जो है वो इनमें से किसी भी जगह के ऊपर हासिल नहीं हुआ था, बल्कि किसके ऊपर हासिल हुआ था, वो किन लोगों के ऊपर, जिन नबी अलैहिस्सलाम का
रेडियो
खानदान,
जामनी काबुल हो जाएंगे।
ठीक है, खानदानी रिश्ता, यानी कुरैश, मक्का मुकरमा के रहने वाले, ठीक है, या थोड़ा सा दूर का खानदानी रिश्ता जैसे कि औस और खजरज के कबाइल, ठीक है ना, ये ननियाल वाला इलाका कहलाता था मदीना तैयबा का, ठीक है, और इसके अलावा थोड़े से और जो अरब के कबाइल, ठीक है, जो कि इस एरिया के अंदर रहते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को गलबा किसके ऊपर अल्लाह ताला ने अता फरमाया, जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में मुखालफत करी, यानी जो सगे थे, ठीक है, जो सगे थे, जो कि कुरैश के कबीले के लोग थे, ठीक है ना, सगे से मुराद यहाँ पर बिल्कुल वो वाला सगा नहीं कि भी सगा भाई सगा बहन, बल्कि जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सबसे पहले मुखालफत करी थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो कबाइल कुरैश थे, जो इन्हीं की एक्सटेंशंस थे, इसी रिश्तेदारियों के, क्योंकि ये रिश्तेदारियां जो हैं अरब के कबाइल की, ये ज्यादातर की जो है वो वही इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जाकर के मिलती हैं, ठीक है, या अरब के जो है वो दूसरे जो कि यमन वगैरह के कुछ कबीले वगैरह थे, ठीक है, जिनके नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अरब के कबाइल कहलाते थे, ठीक है। तो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को गलबा अता फरमा दिया, ठीक है। बाकी गोरों के ऊपर, चाइनीज के ऊपर या अफ्रीकियों के ऊपर, इनमें से किसी को गलबा नहीं मिला, और ना जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर गलबा मिला, ठीक है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की कामयाबी जो है वो क्या थी, ठीक है, तो वो कामयाबी बाकी दो अल्फाज में, जो कि रसूम जाहिलियत के मिटाने मिटाने से, और जो है वो के शिर्क को शिर्क के ऊपर पाबंदियां लगा देना कि भाई आप मुशरिक हैं, आप रसूल के मानने वाले नहीं हैं, आप जो है ना वो इधर नहीं आ सकते, आप इधर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये बेसिकली जो अल्लाह ताला ने दीन भेजा था ना, ठीक है, जो हिदायत के उसूल भेजे थे अल्लाह ताला ने, उन उसूलों के अंदर शैतान ने तब्दीलियां करवा दी थी, ठीक है ना, एडिशंस करवा दी थी और डिलीशंस करवा दी थी, ठीक है, कुछ उसूलों के अंदर एडिशंस करके उनको रसूमात बना दिया था, जिनको रसूमात कहते हैं या बिदआत कहते हैं, ठीक है, और कुछ उसूलों को जो है वो उसने डिलीशंस करवा दी थी, यानी उसमें से शिकस्त व रेख करके कुछ उसका हुलिया बिगाड़ करके कुछ कुछ का कुछ बना दिया था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुनिया में आकर के इस वक्त तक क्या कामयाबी हासिल करी थी, जिसको कि इकमाल और इतमाम का नाम दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने गोया के दीन को रीसेट कर दिया था, गोया के दीन को रीसेट कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि हम आज के जमाने में इस मिसाल को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, या इवन फोन होता है, तो उसके अंदर जो है ना फिर इस्तेमाल के साथ साथ, वक्त के साथ साथ वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मैल फंक्शनिंग हो जाती है, तो फिर उसके अंदर एक रीसेट का बटन होता है, या रीसेट का ऑप्शन होता है, जब आप रीसेट कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जितने ये वायरसेस और जितने ये एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आ गई होती हैं या कोई और मैल फंक्शन हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल बैक टू बेसिक्स पहुंच जाता है। मामला जो है वो बैक टू बेसिक पहुंच जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से दीन को जो है वो रीसेट कर दिया, ठीक है, अल्लाह ताला की मदद से, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के हुक्म से दीन को रीसेट कर दिया। इसको जो है अरबी जुबान में इसका ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं, हाँ, फैक्ट्री रीसेट भी, लेकिन ये अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। अरबी जुबान का लफ्ज क्या है कि तजदीदे दीन, तजदीदे दीन, जैसा कि बिल्कुल न्यू हो गया, रिन्यू हो गया दीन, ठीक है, एज इफ इट वॉज न्यू। हालांकि न्यू नहीं था ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जरिए के साथ जो है वो दुनिया के अंदर आया था ना, ठीक है, अकायद तो सारे के सारे वही हैं जो आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर लेकर के आए थे, अकायद तो नहीं चेंज हुए, ठीक है, क्योंकि अकायद जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो हकीकतें मौजूद हैं, फरिश्ते एक हकीकत हैं, आखिरत एक हकीकत है, नबी अल्लाह के वो हकीकत हैं, अल्लाह की किताबें ये हकीकत हैं, अल्लाह ताला खुद ये हकीकत है, ठीक है ना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, उठाए जाना, ये एक हकीकत है, ठीक है, तो इन हकीकतों जो कि पहले से मौजूद हैं, ये हकीकतें, इन हकीकतों के बारे में हमारे क्या अफकार हैं, हमारी क्या सोचें हैं, राइट, हम इनको कैसा जानते हैं, ठीक है, ये अकायद कहलाते हैं, इसको अकीदा कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो शैतान ने जो अकायद के अंदर उल्टा सीधा ऐड और डिलीट कर दिया था चीजों को, तो वो सारा का सारा जो है वो डिलीट हो गया और फैक्ट्री रीसेट, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स या बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, अकीदा उसके ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अमलियात के अंदर जो अमल होते थे, अमलियात से मुराद यहाँ पर जो अमाल होते हैं, तो अमाल के अंदर भी जो पहले से कंटिन्यू हो रहे थे आमाल, उनमें जो शैतान ने तब्दीलियां कर दी थी, करवा दी थी या कर दी थी, उनको जो है वो फैक्ट्री रीसेट कर दिया और बिल्कुल जो है वो सही हो गया, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ आमाल नए लेकर के आए थे, जैसे कि शरीयत के अंदर कुछ एडिशन जो है वो हर नबी के साथ, हर रसूल के साथ जो है वो कुछ ना कुछ होती रहती थी, तो बस वही जो है वो रह गई दीन के अंदर, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो कामयाबी थी ना, वो ये कामयाबी थी, पोलिटिकल कामयाबी, जिसको कि हम उर्दू जुबान में कहें झंडे गाड़ देना, ठीक है ना, इधर भी झंडे गाड़ दिए, उधर भी झंडे गाड़ दिए, इधर भी जो है वो हमारे महकूम बन गए लोग, उधर भी हमारे महकूम बन गए लोग, नहीं, ऐसा नहीं हुआ नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, बल्कि बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, राइट, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ। उमर फारूक रज़ान और उस्मान गनी रज़ान और सल्तनत उमविया के दरमियान के टाइम में और बाद में भी जाकर के जितनी भी एक्सपेंशन हुई, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर तो नहीं, नबी कभी भी मुसलमानों का गलबा नहीं हुआ ना, राइट, पूरी दुनिया पे तो कभी भी गलबा नहीं हुआ मुसलमानों का, और हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम के आने पर भी पूरी दुनिया में गलबा ना हो, ठीक है, तो पूरी दुनिया में गलबा ये नबी अलैहिस्सलाम की कामयाबी थी ही नहीं, वरना तो फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नाउज बिल्ला ये कहलाएं कि आपका काम पूरा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया पे गलबा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो भाई दुनिया पे गलबा, पोलिटिकल गलबा, झंडे गाड़ देना, ये नबी अलैहिस्सलाम का मकसद जिंदगी नहीं था, बल्कि मकसद जिंदगी क्या था, दीन को रीसेट कर देना, अल्लाह की हिदायत को जो है वो बिल्कुल ठीक कर देना, सही कर देना, सारी बुरी चीजों को उसमें से खत्म कर देना, गलत चीजों को खत्म कर देना, ठीक है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है, उसकी वजह ये है क्योंकि हम अक्सर जो है ना वो गलबे की तारीफ सिर्फ पॉलिटिकल गलबा समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि हम जो है वो गालिब आ जाएंगे, हम जो है वो फतह कर लेंगे, हम जो है वो झंडा गाड़ देंगे, और जिसने झंडे गाड़ दिए वो सबसे बड़ा कामयाब, राइट, जिसने झंडे गाड़ दिए वो सबसे बड़ा कामयाब कहलाता है, और जिसने झंडे नहीं गाड़े वो जो है वो नाकाम कहलाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फिर आप क्या कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने कितने झंडे गाड़े, कहाँ कहाँ झंडे गाड़े, ठीक है, तो आप खुदा ना खासा नाउज बिल्ला आप क्या कहना चाह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कामयाब नहीं है, ठीक है, नहीं, बल्कि कामयाबी की ये तारीफ है ही नहीं हमारे यहाँ, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो कामयाबी अता भी फरमाई ना, वो सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर और जो कबायली निजाम था अरब का उसके ऊपर पॉलिटिकल कामयाबी अता फरमाई, ठीक है। तो हो सकता है कि अब भी अगर किसी को पॉलिटिकल कामयाबी मिले भी ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा इसी हद तक हो, ज्यादा से ज्यादा इसी हद तक हो कि उसके जो ओरिजिनल दुश्मन थे या शुरू में जिन्होंने उसको जो है वो तकलीफें पहुंचाई हैं वो मगलूब हो जाए उससे, बाकी कोई मगलूब ना, वो मगलूब हो जाए बस, ठीक है। हमने तो अपनी तारीफात कहाँ से लेनी है, नबी अलैहिस्सलाम से लेनी है ना, ठीक है। अच्छा, जो आप ससम की सीरत में हुआ, आप ससम की सुन्नत में जैसा मामला हुआ वैसा मामला, उसको कामयाबी कहेंगे ना, ये कि हम अपनी अकल के मुताबिक अपने समझ के मुताबिक किसी को कामयाबी कहना शुरू कर दें और उसी को फिर जो है वो अपना स्टैंडर्ड बना लें, हर किस नहीं। आगे फरमाते हैं कि लेकिन दर हकीकत इन दोनों के मफहूम में एक फर्क है, यानी इकमाल और इतमाम के मफहूम में एक फर्क है जिसको मुफरदात अल कुरआन में इमाम राग़िब इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से बयान फरमाया है कि किसी चीज का इकमाल और तकमील, ठीक है, ये इकमाल और तकमील जो है ये बस, एक मिनट सॉरी यार, इसमें सफर भी है साथ साथ चल रहा। अच्छा, वो आगे पहुंचा दें जल्द से जल्द। अच्छा, रहते हैं तो इकमाल और तकमील जो है ना उस चीज को, उसको कहते हैं कि उस चीज से जो गर्ज और मकसूद था वो पूरा हो गया, ठीक है, गर्ज और मकसूद था वो पूरा हो गया। तो अभी हमने ये बात करी कि नबी अलैहिस्सलाम का मकसूद क्या था, वो दीन को रीसेट कर देना था, ठीक है, दीन की तजदीद कर देना था, उसको रिन्यू कर देना था, ठीक है। तो इसको जो है वो इकमाल और तकमील कहा, क्योंकि यही मकसूद था नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब हम भी जो अपनी मेहनतें करें ना, ठीक है, तो हम भी अपनी मेहनत का कमाल किसको समझें कि जैसा दीन हमें नबी अलैहिस्सलाम से मिला है हम उस दीन को वैसे ही उसकी हिफाजत करें, ठीक है ना, यानी हम खुद भी उसको वैसा ही समझें जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, और हम अपने आगे आने वाली नस्लों को भी वैसे ही पहुंचा दें जैसे कि हमें ऊपर से नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से, अपने उलमा और मशायख अकाबरीन के वास्ते से हमें दीन मिला है, वैसा ही हम आगे पहुंचा दें, यही हमारे दीन का भी इकमाल होगा, यही हमारे दीन की भी तकमील होगी, ठीक है। चाहे आप के फॉलोअर्स बने या चाहे आपके फॉलोअर्स ना बने, चाहे आपके क्लास के अंदर जो है वो 100 लोग आकर के आपकी क्लास सुना करें, चाहे एक बंदा आकर के आपकी क्लास सुना करें, चाहे आपके बयान के अंदर जो है वो 1000ों लोग शामिल हुआ करें, चाहे आपके बयान के अंदर जो है वो 5 लोग भी शामिल ना हुआ करें, ये हमारा मेयार नहीं है, इकमाल और तकमील का ये मेयार हरगिज हरगिज नहीं है, ठीक है। चाहे YouTube के ऊपर आपके जो है वो चैनल के ऊपर, जो आपका टॉक्स का चैनल है उसके ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ सब लाइक्स मिले या ना मिले, उसको वी डोंट केयर, एब्सोल्यूटली नो केयर, ठीक है। बल्कि हमारा फोकस किस बात पर है कि जैसा हमें दीन ऊपर से मिला है हम उसी दीन को दीन समझते हैं या उसके अलावा किसी चीज को दीन समझना शुरू हो गए, ठीक है। और हमने आगे जो मैसेज पहुंचाया है वो हमने वैसे ही पहुंचाया है जैसे हमें मिला है, या हमने उसके अंदर जो है वो रद्द बदल कर दिया। अगर वैसे ही पहुंचाया है तो हमारा दीन जो है वो कामिल और मुकम्मल है, और अगर नहीं पहुंचाया है तो कितने लाखों करोड़ों आपके सब्सक्राइबर्स बन जाएं, आपके लाइक्स वाले बन जाएं, हम फेल हैं, हम फेलियर हैं, ठीक है, क्योंकि हम इकमाल दीन जो है वो नहीं कर सके। तो इकमाल और तकमील का ये मकसद है, ये मफहूम है, और बस यही हमने करना है और कुछ नहीं करना इसके अलावा। इसीलिए इकमाल दीन का हासिल ये हुआ कि कानून इलाही और अहकाम दीन के इस दुनिया में भेजने का जो मकसद था वो आज पूरा कर दिया गया, और इतमाम नियामत का मतलब ये हुआ कि अब मुसलमान किसी के मुहताज नहीं, ठीक है, उनको खुद अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने गलबा कुव्वत और इख्तदार अता फरमा दिया जिसके जरिए वो इस दीन हक के अहकाम को जारी और नाफिज कर सके, ठीक है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स जो है ना वो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए इस सूरत में कि मुसलमानों को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, ठीक है, नो मोर डिपेंडेंसीज, सेल्फ सफिशिएंट, इस उर्दू के जुमले का भी यही जो है मफहूम बनता है कि वो अब अहकामात को जारी कर सकें, नाफिज कर सकें। अब उनको जो है ना वो पार्टनरशिप बनाने की, अलायंसेस बनाने की एज सच जरूरत ना पड़े, किसी काम को अचीव करने के लिए खुद ही अपने ताकत की बुनियाद पर वो काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास जो है वो रोक लेते हैं, क्योंकि वक्त भी मुकम्मल हो गया है और आगे बहुत भी काम करना है। तो बाकी इसी की थोड़ी सी और तफसील जो है वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। सलाम।